आचार्य शुक्ल की समीक्षा का संतुलन और प्रौढ़ रूप हमें भ्रमर गीत सार की भूमिका में रूप में प्रस्तुत सूर्य काव्य की सार गर्भित समीक्षा में दृष्टिगत होता है। उन्होंने संक्षेप में सूरदास की सीमाओं का उल्लेख किया है। उन्हें सूरदास के में लोक संग्रह की वृत्ति का अभाव खटकता है। वस्तु गांभीर्य की कमी और वर्ण विषय की परिमिति की ओर भी उनका ध्यान गया है। कहीं कहीं उपमान विधान में उपमेय उपमान संबंधों में संतुलन की कमी और ऊहा के अतिरेक के कारण वर्णन की अस्वाभाविकता भी उन्हें अशोभन प्रतीत हुई है। इन छोटी मोटी खटकने वाली बातों को छोड़कर उन्होंने सूर के संबंध में जो निर्णय दिए हैं वे आज भी अत्यंत मूल्यवान है। उन्होंने बताया कि रतिभाव के भीतर जितनी मानसिक वृत्तियों और अंतरदशाओं का अनुभव एवं प्रत्यक्षीकरण सूरदास ने किया है और बाल वृत्तियों की जैसी स्वाभाविक व्यंजना सूर के काव्य में हुई है वह अन्यत्र दुर्लभ है। कोप जीवन की स्वच्छंदता और गोचारण के मधुर दृश्यों का अंकन करने में सूर अप्रतिम है। इनके अतिरिक्त बचपन के सहज एवं निर्विकार प्रेम का साहचर्य से पुष्ट होकर जीवनोत्सव के रूप में प्रस्फुटित होना प्रकृति के खुले क्षेत्र में विप्रलम्ब भाव के व्यापक एवं गंभीर प्रसार वियोग विह्वला गोपियों की मानसिक दशा के अंतर्गत झल्लाहट चकपकाहट खिजलाहट अनुताप अधीनता विनोद चपलता धृति असूया घनिष्ठता आदि के मार्मिक चित्र मुरली प्रसंग के अंतर्गत संबंध भावना के विस्तार और मुरली के प्रति सपत्नी भाव की व्यंजना वियोग वात्सल्य के अंतर्गत उदासीनता निर्वेद तिरस्कार और अमर्ष जैसे भावों की गूढ़ संश्लिष्ट व्यंजना अप्रस्तुत विधान के अंतर्गत उपमानों की उपयुक्तता और व्यापार समष्टि सूचक उपमानों के विधान द्वारा पूरे प्रसंग की मार्मिक व्यंजना तथा उद्धव गोपी संवाद के अंतर्गत गोपियों की उक्तियों में भाव प्रेरित वक्रता का वैविध्य आदि अनेक वस्तु एवं शिल्पगत विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करके आचार्य शुक्ल ने सूर काव्य की अपूर्व रसधारा के भीतर अवगाहन के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। काव्य में भावपक्ष और कलापक्ष की स्थिति अलग अलग स्वीकार करते हुए भी विवेचन के स्तर पर आचार्य शुक्ल के बराबर भाव प्रेरित विदग्धता भाव व्यंजक श्रेष्ठता और भाव प्रेरित वचन रचना पर बल देते हुए भाव और कला के श्लिष्ट विधान को काव्य सौंदर्य के लिए आवश्यक माना है। सूर की प्रतिभा को एक मुखी स्वीकार करते हुए भी आचार्य शुक्ल का दृढ़ मत है कि जिस क्षेत्र को सूर ने चुना है उस पर उनका अधिकार अपरिमित है, उसके वे सम्राट हैं। आचार्य शुक्ल के बाद उपर्युक्त तीनों कवियों की अनेक दृष्टियों से समीक्षाएं की गई हैं, किंतु आचार्य शुक्ल के निर्णय आज भी अपने स्थान पर हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्राचीन एवं नवीन कवियों के संबंध में सूत्र रूप में जो सारगर्भित समीक्षात्मक टिप्पणियां दी हैं वे आगे चलकर परवर्ती समीक्षकों द्वारा की गई विशद समीक्षाओं का आधार बन गई हैं। इन सूत्रों की व्याख्या करके अनेक समीक्षकों ने अपनी समीक्षा को कृतार्थ किया है। यहाँ कुछ सूत्रबद्ध टिप्पणियों को उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा। क केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ख जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समान शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। ग इनकी यानी पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। घ ये अर्थात घनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाली हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। अंग इंसा देव जैसा अर्थ षष्ठ और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। च वे भारतीय सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। छ गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। ज का मायने में उन्होंने नरजीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। झ छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। ट बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक वस्तु प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरस भावनाओं के रंग में देखा है। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। कहना न होगा कि उपर्युक्त टिप्पणियां हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का संस्कार बन चुकी है। उपर्युक्त टिप्पणियों का आचार्य शुक्ल ने आदिकाल से लेकर अद्यतन काल तक का हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करने के क्रम में लिखा है। उस समय उनके सामने भाषा और साहित्य संबंधी अनेक प्रश्न थे, फिर भी उन्होंने प्रत्येक कवि की अलग अलग जो पहचान बताई है वह अविस्मरणीय है तथा नवीन और प्राचीन रचनाओं को इस बारीकी से उन्होंने देखा परखा है वह श्लाघ्य है। उनका कोई भी निर्णय आरोपित नहीं है। रचनाओं के मर्म में प्रवेश करने के बाद ही उन्होंने अपनी धारणाएं बनाई हैं, इसलिए उनके निर्णयों का आज भी महत्व और मूल्य है। आचार्य शुक्ल के समीक्षक व्यक्तित्व के महत्व को उनके बाद के प्राय सभी ख्यातिलब्ध समीक्षकों ने स्वीकार किया है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने लिखा है, इनोडेट कामा, साहित्यिक कृतियों और साहित्य शास्त्र की पद्धतियों का निरूपण करने में भी शुक्ल जी ने असाधारण अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है। सच पूछिए तो रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति आदि संप्रदायों की जो व्याख्याएं आज प्रचलित हैं वे प्रमुखतः शुक्ल जी द्वारा उद्भावित हैं। यूनाइटेड कामाबंद, नए साहित्य नए प्रश्न। आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि के संबंध में अपना मत प्रकट करते हुए वे कहते हैं, यूनाइटेड कामा, शुक्ल जी की समीक्षा दृष्टि अतिशय मार्मिक थी। परिणाम स्वरूप उनकी समीक्षाओं ने जो साहित्यिक चेतना उत्पन्न की वह पर्याप्त विशद और स्वस्थ थी। एक नया मानदंड शुक्ल जी ने स्थापित कर दिया जिसके आधार पर हिंदी समीक्षा उत्तरोत्तर उन्नति कर रही है। शुक्लोत्तर समीक्षा के दूसरे प्रखर स्तंभ डॉक्टर नगेंद्र आचार्य शुक्ल के महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं, आरंभ में ही आचार्य शुक्ल की प्रभाववश मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा है। मेरे अपने संस्कार शुक्ल जी के संस्कारों से सर्वथा भिन्न थे। मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो जाते थे और मैं यह मानने को विवश हो जाता था कि इस व्यक्ति की काव्य दृष्टि चारे संकुचित हो, लेकिन फिर भी अपनी सीमा में यह महारथी अजेय है। आचार्य नंदलाली वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र दोनों इस स्वच्छतावादी पद्धति के समीक्षक, दोनों ने उनके आलोचक व्यक्तित्व के महत्व को मुक्त हृदय से स्वीकार करके एक बहुत बड़ी सच्चाई उजागर की है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा तो आचार्य शुक्ल की समीक्षा पद्धति को हिंदी के लिए वरदान मानते हैं। शुक्ल जी के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है, दृढ़ता, आत्मविश्वास और निर्भीकता शुक्ल जी के विशेष गुण हैं। लाख विरोधी प्रचार हो, वह अपने सिद्धांत पर डिग रहे। रहस्यवाद की भारतव्यापी धूम होने पर भी उन्होंने उसका विरोध करना नहीं छोड़ा। भारतीय अध्यात्मवाद की विश्व में डुग्गी पीटने पर भी उन्होंने वास्तविक जगत का सूत्र नहीं छोड़ा। इस जगत के चित्रण को भारतीय साहित्य की मूल विशेषता बतलाया और अध्यात्म शब्द को साहित्य के मैदान से बाहर निकालने देने को कहा। अंग्रेजी और संस्कृत की धाक की परवाह न करके उन्होंने इन भाषाओं के साहित्य में जो कमजोरियां दिखी उनका भी खुलकर विवेचन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आचार्य शुक्ल के आलोचक व्यक्तित्व को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी खुलकर सराहा है। वे कहते हैं, हिंदी संसार में शुक्ल जी एक और अद्वितीय व्यक्तित्व लेकर अवतीर्ण हुए थे। प्राचीन साहित्य का इस प्रकार मंथन करने वाले कम साहित्यिक समालोचक होंगे। संस्कृत के साहित्य शास्त्र पर उनका पूर्ण अधिकार था। यह कह सकना बड़ा कठिन है कि आचार्य शुक्ल के ऊपर प्राचीन विचारों का प्रभाव अधिक है या नवीन विचारों का। इस लेखक का प्रभाव इतना व्यापक हो उसकी असाधारण प्रतिभा के लिए प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं। आचार्य शुक्ल का महत्व स्वीकार करने वाले उपर्युक्त आलोचक हिंदी आलोचना के आधार स्तंभ बन गए हैं। इसलिए उनकी आत्मस्वीकृतियों का विशेष महत्व है। उनकी स्वीकृतियाँ इस बात का प्रमाण है कि आचार्य शुक्ल ने अपने बाद की पीढ़ी को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी उनका महत्व और प्रभाव कम नहीं हुआ है। रस के प्रतिमान की प्रसंगानुकूलता की चर्चा करते हुए डॉक्टर नामोर सिंह ने शब्द शक्ति विवेचन के क्रम में आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित अर्थमीमांसा के सिद्धांत को उल्लेखनीय माना है और नई कविता के संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता स्वीकार की है। वे कहते हैं, एक व्यावहारिक समीक्षक के नाते आचार्य शुक्ल इस बात को भलीभांति जानते थे कि काव्य में अर्थमीमांसा के द्वारा ही रस निरूपण किया जा सकता है और कविता की अर्थमीमांसा के बिना अनायास लभ्य अनुभूति के आधार पर कविता का मूल्यांकन करना मूल्यांकन नहीं बल्कि प्रभावाभिव्यंजक आलोचना का उपहासपद नमूना है। कविता के नए प्रतिमान। नामोर सिंह के अतिरिक्त वर्तमान पीढ़ी के अनेक नए समीक्षकों ने विविध संदर्भों में आचार्य शुक्ल का उल्लेख करके उनकी प्रासंगिकता की पुष्टि की है। श्री अमृत राय ने सामूहिक भाव और साधारणीकरण के संबंध का विवेचन करते हुए डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने साहित्यिक शैली विज्ञान विषयक अपनी लेखमाला की दूसरी किस्त में संसर्गगत काव्य संसार की चर्चा करते हुए मनोजर पांडे ने साहित्य रचना के संदर्भ में अनुभूति के महत्व पर विचार करते हुए डॉक्टर केदारनाथ सिंह ने हिंदी आलोचना में बिंब सिद्धांत के विकास की चर्चा करते हुए डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने भारतीय काव्य सिद्धांतों के प्रतिमानों का नई संभावनाओं में संचार पर विचार करते हुए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आलोचना की भाषा के वैशिष्ट का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने यथार्थवाद के स्वरूप का विवेचन करते हुए डॉक्टर रघुवंश ने रस सिद्धांत और आधुनिक मनोविज्ञान के संबंध में विचार करते हुए तथा रमेश चंद्र शाह ने छायावाद की प्रासंगिकता के विवेचन क्रम में आचार्य शुक्ल का सम्मानपूर्वक स्मरण किया है। आलोचकों की सूची को बढ़ाया भी जा सकता है, किंतु यहाँ हमारा लक्ष्य हिंदी के नए समीक्षकों पर आचार्य शुक्ल का प्रभाव दिखाना नहीं है। हम केवल यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज भी हिंदी आलोचना का ऐसा कोई संदर्भ नहीं है जिसके सूत्र आचार्य शुक्ल की समीक्षा में विद्यमान न हो। उनकी चर्चा के बिना हम किसी भी सूत्र को विकसित नहीं कर पाते। उनकी समीक्षा दृष्टि की विशुद्धता, गहनता, सूक्ष्मता और संतुलन का सबसे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। आचार्य शुक्ल की समीक्षा में पूर्ववर्ती समीक्षा के सारे उत्कृष्ट और ग्राह्य तत्व अंतर्निहित हैं और परवर्ती समीक्षा की अनेक संभावनाएं समाविष्ट हैं। वे सच्चे अर्थों में हिंदी के पथिकृत आचार्य हैं। काव्य में लोक मंगल की साधना का प्रतिमान। आचार्य शुक्ल ने ऐसे काव्यों को जिनमें मंगल का विधान करने वाला भाव करुणा बीज रूप में विद्यमान रहता है श्रेष्ठ घोषित करके लोक मंगल की साधना को काव्य प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उनका तर्क है कि लोक में मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, करुणा और प्रेम। करुणा की गति लोक की रक्षा की ओर होती है और प्रेम की गति लोक के रंजन की ओर। इन दोनों भावों को वे सत्व गुण प्रधान मानते हैं। वे कहते हैं, उच्च दशा का प्रेम और करुणा दोनों सत्व गुण प्रधान है। त्रिगुणों में सत्व गुण सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि उसकी ऊपरी सीमा नित्य पारमार्थिक सत्ता के पास तक व्यक्त और अव्यक्त की संधि तक जा पहुँचती है। इसी से शायद वल्लभाचार्य जी ने सच्चिदानंद के सत्य स्वरूप का प्रकाश करने वाली शक्ति को संधनी कहा है। यह जगत अव्यक्तावस्था से छूटे हुए प्रकृति का व्यक्त स्वरूप है। इसमें सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों की स्थिति निरंतर बनी रहती है। ऐसी स्थिति में मंगल का विधान तभी हो सकता है जब रजस और तमस गुण सत्व गुण के अधीन रहकर कार्य करें। काव्य भाव प्रधान होता है। भावों में करुणा और प्रेम तत्व सत्व गुण प्रधान होते हैं और क्रोध, भय, घृणा आदि प्रचंड भाव रजस और तमस प्रधान होते हैं। आचार्य शुक्ल की मान्यता यह है कि करुणा और प्रेम से प्रेरित होने पर ये रजस और तमस प्रधान, प्रचंड और उग्र भाव भी सुंदर हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में लोक पीड़क राक्षस राज रावण के प्रति राम का कालाग्नि सदृश क्रोध इसलिए लोकोत्तर सौंदर्य का विधान कर सका है कि वह करुणा से लोक रक्षा की भावना से प्रेरित है। रावण की मृत्यु के बाद लोक से दुख की छाया हट जाती है। लोक पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है और तब रामराज्य की स्थापना होती है। यह रामराज्य व्यवहारिक स्तर पर सत्य और आनंद का प्रतीक है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में लोक की रक्षा सत्य का आभास है लोक का मंगल परमानंद का आभास है। इस व्यावहारिक सत्य और आनंद का प्रतीक रामराज्य। इस रामराज्य की महिमा का वर्णन करते हुए शुक्ल जी कहते हैं, राज्य की कैसी व्यापक भावना है। आदर्श राज्य केवल बाहर कर्मों का प्रतिबंधक और उत्तेजक नहीं है, हृदय को स्पर्श करने वाला है। इसमें लोक रक्षा के अनुकूल भावों की प्रतिष्ठा करने वाला है। यह धर्म राज्य है, प्रकृति का रंजन करने वाला है। इस राज्य की स्थापना केवल शरीर पर ही नहीं होती, हृदय पर भी होती है। यह राज्य केवल चलती हुई जड़ मशीन नहीं है, आदर्श व्यक्ति का परिवर्तित रूप है। रामराज की स्थापना शरीर पर ही नहीं, हृदय पर भी होती है। हृदय पर करुणा और प्रेम के द्वारा ही राज्य किया जा सकता है। इस प्रकार राजा शुक्ल की दृष्टि में करुणा और प्रेम के पुंज लोक में धर्म के विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित शील के आगार राम जैसे नायक को, ऐसे नायक को जिसकी प्रचंड और उग्र वृत्तियां निरंतर सत्व गुण के अधीन गतिशील हों, केंद्र में रखकर रचित काव्य में ही पूर्ण सौंदर्य के प्रकाशन की क्षमता होती है। वे कहते हैं, यदि बीज भाव की प्रकृति मंगल विधायनी होती है तो उसकी व्यापकता और निर्विशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव तीक्ष्ण और कठोर होने पर भी सुंदर होते हैं। ऐसे बीज भाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती है उसके सब भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति होती है, अर्थात पाठक या श्रोता भी रस रूप में उन्हीं भावों का अनुभव करते हैं जिन भावों की वह व्यंजना करते हैं। यही नहीं, वे यहाँ तक जाते हैं कि ऐसे पात्र की गति में बाधा डालने वाले पात्रों के उग्र या तीक्ष्ण भावों के साथ पाठकों का वास्तव में तादात्म्य नहीं होता। चाहे उनकी व्यंजना में रस की निष्पत्ति करने वाले तीनों अवयव वर्तमान हो। लोकमंगल की साधना को काव्य प्रतिमान के रूप में प्रदर्शित करके आचार्य शुक्ल ने अपनी मौलिक दृष्टि का परिचय दिया है, किंतु इस प्रतिमान को लेकर हिंदी जगत में दो बिंदुओं पर पर्याप्त विवाद चल पड़ा है। पहला बिंदु लोक संबंधी अवधारणा है और दूसरा बिंदु है मंगल विधायक बीज भाव प्रेरित आदर्श नायक द्वारा व्यक्त भाव से ही सीधे साधारणीकरण की स्थिति का होना। सबसे पहले हम शुक्ल जी की लोक संबंधी अवधारणा पर विचार करेंगे। आचार्य शुक्ल ने अपने मनोविकारों पर लिखे गए निबंधों गोस्वामी तुलसीदास की समीक्षा चिंतामणि प्रथम भाग में संग्रहित प्रसिद्ध निबंध काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था तथा चिंतामणि द्वितीय भाग में संग्रहित लंबे निबंध काव्य में रहस्यवाद में अनेक संदर्भों में लोक शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने लोक के साथ अन्य शब्दों को जोड़कर अनेक समासिक पदों की रचना की है और विभिन्न संदर्भों में इसका प्रयोग करके लोक शब्द को अधिक व्यंजक बना दिया है। लोकमंगल, लोकरंजन, लोक संग्रह, लोक सामान्य, लोक पावन, लोक हृदय, लोक जीवन, लोक विप्लव, लोकदर्शी, लोकचरित, लोकसत्ता, लोकबद्ध, लोक व्यवस्था, लोक धर्म, लोक नीति, लोक व्यवहार, लोक बाह्य, लोक गति, लोकवाद जैसे कितने ही सामासिक पदों का प्रयोग उन्होंने किया है। इन प्रयोगों में कुछ ऐसे भी हैं जहां उन्होंने लोक शब्द की व्याख्या करने का या उसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यहां हम उन संदर्भों को प्रस्तुत करना चाहेंगे जिनमें लोक शब्द का अर्थ स्पष्ट हुआ है। दूसरी बात यह है कि भारतीय भक्ति मार्ग व्यक्ति कल्याण और लोक कल्याण के लिए है, वह लोक या जगत को छोड़कर नहीं चल सकता। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 5। अब तक जो कुछ कहा गया उससे गोस्वामी जी व्यक्तिवाद के विरोधी और लोकवाद के समर्थक लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 30। गृह धर्म पर दृष्टि रखने वाला किसी परिवार की रक्षा देखकर, वर्ग धर्म पर दृष्टि रखने वाला किसी वर्ग या समाज की रक्षा देखकर और लोक धर्म पर दृष्टि रखने वाला लोक या समस्त मानव जाति की रक्षा देखकर आनंद का अनुभव करता है। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 208। वहीं अवरक्रावे जो कभी वादग्रस्त होकर चेतना के कोने के बाहर की बात कहने जाता है, अब जब लोकवादी के रूप में हमारे सामने आता है, वो शुद्ध काव्य दृष्टि का प्रमाण देता है, तब उसकी सच्चाई में संदेह करने की कोई जगह नहीं रह जाती। चिंतामणि द्वितीय भाग पृष्ठ संख्या 86। समाजशास्त्र के आधुनिक विवेचकों ने भी लोक संग्रह और लोक विरोध की दृष्टि से जनता का विभाग किया है। गिंडिग के चार विभागों ये हैं, लोक संग्रही, लोक बाह्य, अलोकोपयोगी और लोक विरोधी। उपरोक्त संदर्भ में लोक शब्द कहीं जगत के अर्थ में, कहीं समस्त मानव जाति के अर्थ में और कहीं मानवता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्वयं संस्कृत साहित्य में लोक शब्द संसार, मानव जाति, प्रजा, समुदाय, क्षेत्र, सामान्य जीवन आदि कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब प्रश्न यह है कि लोक मंगल की साधना के संदर्भ में प्रयुक्त लोक शब्द से क्या तात्पर्य है। तुलसीदास की लोक नीति और लोक मर्यादा का विवेचन करते हुए आचार्य शुक्ल ने लोकवाद के साथ सोशलिज्म शब्द का प्रयोग किया है। इससे यह धारणा बनती है कि उनका लोकवाद समाजवाद का ही पर्याय है, लेकिन उन्होंने स्वयं इस भ्रम का निवारण करते हुए कहा, उनका लोकवाद वह लोकवाद नहीं है जिसका अकांड तांडव रूस में हो रहा है। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण नहीं चाहते, जिसमें व्यक्ति इच्छानुसार हाथ पैर भी न हिला सके, अपने श्रम शक्ति और गुण का अपने लिए फल ही न देख सके। वे व्यक्ति के आचरण का इतना ही प्रतिबंध चाहते हैं कि जितने में दूसरे के जीवन मार्ग में बाधा न पड़े। राजा प्रजा उच्च नीच धनी दरिद्र सबल निर्बल शास्त्र शासक मूर्ख पंडित पति पत्नी गुरु शिष्य पिता पुत्र इत्यादि भेदों के कारण जो अनेक रूपात्मक संबंध प्रतिष्ठित हैं, उनके निर्वाह के अनुकूल मन वचन और कर्म की व्यवस्था ही उनका लक्ष्य है, क्योंकि इन संबंधों के सम्यक निर्वाह से ही वे सबका कल्याण मानते हैं। इन संबंधों की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति प्राधान्यवाद के वे अवश्य विरोधी हैं। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 30। उपर्युक्त विवेचन में तुलसी के लोकवाद के प्रति आचार्य शुक्ल के मन में एक प्रकार का आकर्षण और रूसी समाजवाद के प्रति एक प्रकार का आक्रोश स्पष्ट रूप में प्रकट हुआ है। इससे यह साफ हो जाता है कि आचार्य शुक्ल रूसी समाजवाद के समर्थक नहीं है और उनका लोक सर्वहारा वर्ग नहीं है। आचार्य शुक्ल की बद्धमूल धारणा थी कि जिस प्रकार परिवार में ऊंची नीची श्रेणियां होती हैं, उसी प्रकार समाज में भी शील विद्या बुद्धि शक्ति आदि के भेद के आधार पर ऊंची नीची श्रेणियां रहेंगी। उनके अनुसार फावड़ा लेकर मिट्टी खोदने वाले और कलम लेकर वेदांत सूत्र लिखने वालों के काम एक ही कोटि के नहीं माने जा सकते। समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता बराबर रहेगी जो पठन पाठन तत्व चिंतन और ज्ञान के नए नए क्षेत्रों के अनुसंधान में प्रवृत्त रहेंगे। ऐसे लोग भी आवश्यक होंगे जो अस्त्र शस्त्र के से सज्जित होकर देश की रक्षा में निरंतर प्रवृत्त रहेंगे। कृषि वाणिज्य व्यवसाय आदि से जुड़े लोग भी समाज के अंग रहेंगे और इन सभी के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने वाला एक वर्ग भी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। इन वर्णों के द्वारा संपादित कार्य एक ही कोटि के नहीं माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिन कार्यों को श्रेष्ठ समझा जाएगा, उनसे जुड़े लोगों के प्रति छोटा समझा जाने वाले प्रत्येक कार्य से जुड़े लोगों के मन में ईर्ष्या भाव का ईर्ष्यादेश का भाव उत्पन्न हो सकता है। आचार्य शुक्ल की मान्यता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में यह भाव इसलिए उत्पन्न नहीं होता था कि जो श्रेष्ठ थे समाज के प्रति जिनका त्याग और कर्तव्य भाव भी उसी क्रम में अधिक होता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय को लोक हित में प्रतिक्षण अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करने के लिए तत्पर रहना पड़ता था। शेष वर्गों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक सुख की व्यवस्था के लिए पूरा अवकाश रहता था। आचार्य शुक्ल के शब्दों में, जब तक उच्च श्रेणियों के कर्तव्य की कठिनता प्रत्यक्ष रहेगी, कठिनता का साक्षात्कार के अवसर आते रहेंगे। जब तक नीची श्रेणियों में ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं जागृत हो सकता, जब तक वे क्षत्रियों को अपने चारों ओर धर्म जन की रक्षा में तत्पर देखेंगे, ब्राह्मणों के ज्ञान की रक्षा और वृद्धि में सब कुछ त्याग कर लगे हुए पाएंगे, तब तक वे अपना सब कुछ उन्हीं की बदौलत समझेंगे और उनके प्रति उनमें कृतज्ञता श्रद्धा और मान का भाव बना रहेगा। जब कर्तव्य भाग शिथिल पड़ेगा और अधिकार भाग ज्यों का त्यों रहेगा, तब स्थिति विधातिनी विषमतम उत्पन्न होगी। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 26। आचार्य शुक्ल का निष्कर्ष है, वर्ण व्यवस्था की छोटाई बड़ाई का यह अभिप्राय नहीं था कि छोटी श्रेणी के लोग दुख में ही समय काटें और जीवन के सारे सुभीते बड़ी श्रेणी के ही लोग लें। वर्ण व्यवस्था अपने मूल रूप में चाहे जितनी संतुलित और सामंजस्यमय रही हो, तुलसीदास उसे पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए चाहे जितने प्रयत्नशील रहे हों, आचार्य शुक्ल यह अच्छी तरह जानते थे कि जिस युग में वे लोक मंगल की साधना का प्रतिमान प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उस युग में राजधर्म आचार्य धर्म वीर धर्म सब पर सोने का पानी फिर गया है। ब्राह्मण धर्म और छात्र धर्म दोनों का लोप हो गया है, केवल वणिक धर्म रह गया है। व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। बड़े बड़े राज्य माल की बिक्री के लिए लड़ने वाले सौदागर हो गए। वे यह भी जानते थे कि उनका देश गुलाम है, विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश उस पर शासन कर रहा है। वे यह भी देख रहे थे कि उसके शासन में उनका देश दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। सन 1907 ईस्वी में ही वे अपने देशवासियों को बता देना चाहते थे कि प्रत्येक ग्रामवासी को यह जानना चाहिए कि अधिक काम करने के बाद भी उसे उसके बदले में कम क्यों दिया जाता है। प्रत्येक नागरिक को यह बताया जाना चाहिए कि उसकी सेवाओं की इतनी मांग कम मांग क्यों है, और वस्तुतः प्रत्येक भारतीय को यह साफ साफ पता होना चाहिए कि उसका देश दिन ब दिन और गरीब क्यों होता जा रहा है। इस गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की दशा में वे स्वदेशी आंदोलन को एक प्रयास मानते थे। उनका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था, इस दिशा में स्वदेशी आंदोलन एक प्रयास किया गया है। लाखों लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए और नियमित रोजगार के अभाव में भटक रहे लाखों लोगों को काम देने के उद्देश्य से चलाया गया आंदोलन है। वे अनुभव कर रहे थे कि ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के लिए सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर करना होगा, देशी भाषा के साहित्य के विकास को प्रोत्साहन देना होगा, भारत के उद्योग धंधों का परिवर्धन और परिष्कार करना होगा, और इसके लिए अपेक्षित तकनीकी शिक्षा प्राप्त करनी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन करना होगा और उसे इस रूप में ढालना होगा कि अफसरों की जी हजूरी करने की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर वह लोगों में उच्च उत्तरदायित्व का भाव भर सके, देश के लोगों में ऐसी जागृति पैदा करनी होगी जो राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के अवरोधक तत्वों को निर्मूल कर दे। यह सब तभी संभव होगा जब सामान्य जनता को ब्रिटिश शासन के असली चरित्र की सही जानकारी दी जाए, और इसके लिए हमें समाज सुधारक, राजनीतिक, आंदोलनकर्ता, कवि और शिक्षाविद, इन सब की एक ही साथ एक ही समय में जरूरत है। जाहिर है कि जिस समाज में आचार्य शुक्ल जी रह रहे थे उसमें वे आमूल परिवर्तन चाहते थे। देश की स्वतंत्रता के साथ ही वे उसे संपन्न और खुशहाल भी देखना चाहते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस लोक मंगल की साधना में वे करुणा से प्रेरित अपने काव्य नायक को प्रवृत्त करना चाहते हैं वह लोक किसका होगा। लोक शब्द का प्रयोग उन्होंने चाहे जितने अर्थों में किया हो, वह लोक जो अपनी उनकी करुणा का आलंबन था निश्चय ही पीड़ितों, दुखियों, गरीबों और अभावग्रस्तों का था। आखिर दुख की छाया का लोक संपन्नों, सुविधाजीवियों, प्रभुओं अर्थात मोटे आदमियों का तो नहीं ही होगा। निश्चय उनका लोक अन्याय और अत्याचार से पीड़ित वह जनसमाज है जो अपनी दयनीय स्थिति में किसी शक्ति संपन्न और शीलवान राष्ट्र नायक को करुणा प्लावित करके अन्याय के प्रतिकार में प्रवृत्त करने की क्षमता रखता है। अन्याय के शिकार में पीड़ित जनसमाज की भागीदारी के लिए आचार्य शुक्ल समाज सुधार, शिक्षा संस्कार और जनजागरण की बात तो करते हैं, किंतु समाज को संघबद्ध करने के लिए कोई दर्शन नहीं देते। यह संकेत अवश्य कर देते हैं कि किसी भी व्यवस्था में समाज व्यवस्था यांत्रिक नहीं होनी चाहिए, मात्र दंड भय से अर्थ शक्ति खड़ी करके समाज व्यवस्था का संचालन उचित नहीं है। सत्ता को संवेदनशील होना चाहिए, व्यक्ति वैशिष्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए, समाज में व्यक्ति को गुण, शील, बुद्धि, प्रतिभा, कला कौशल के विकास की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। आचार्य शुक्ल उसी काव्य की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं जिसमें लोक मंगल की साधना का विधान हो। उनकी दृष्टि में काव्य मात्र का लक्ष्य आनंद मंगल का विधान है। आनंद मंगल की दो स्थितियां होती है, कभी यह सिद्ध या आविर्भूत होता है, कभी इसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न या साधना करनी पड़ती है। जब यह सिद्ध होता है तब सुख, सौंदर्य, माधुर्य, विभूति, उल्लास आदि का प्राधान्य होता है। जब यह सिद्ध नहीं होता कि इसकी सिद्धि के लिए साधना करनी पड़ती है तो पीड़ा, बाधा, अन्याय, अनाचार आदि के दमन की आवश्यकता होती है, और इस दमन से प्रवृत्त होने के लिए करुणा प्रेरित क्रोध, उत्साह, घृणा आदि प्रवृत्तियां गतिशील होती हैं। जिन काव्यों में आनंद मंगल की सिद्धावस्था को केंद्र में रखा जाता है उनमें काव्य नायक मधुचर्या में लीन होता है और उसका जीवन सौंदर्य, माधुर्य, आस विलास में व्यतीत होता है। इसके विपरीत जिन काव्यों में आनंद मंगल की साधना को केंद्र में रखा जाता है उनमें काव्य नायक लोक पीड़ा का निराकरण करने के लिए अत्याचारी के दमन में प्रवृत्त होता है। उसका जीवन संघर्ष का जीवन होता है। वह करुणा, दया, ममता आदि गुणों से युक्त उदात्त चरित्र लोक नायक रूप में स्वीकृत होता है। लोक मंगल की सिद्धावस्था के काव्य में जो सौंदर्य होता है उसमें गत्यात्मकता नहीं होती, वह सौंदर्य स्थितिशील होता है, प्रयत्न में गति होती है। इसीलिए लोक मंगल की साधनावस्था वाले काव्य का सौंदर्य गत्यात्मक होता है। आचार्य शुक्ल की स्थापना यह है कि लोक मंगल की साधना में तत्पर काव्य नायक के साथ पाठकों की इतनी गहरी सहानुभूति हो जाती है कि उसके प्रत्येक आचरण का चाहे वह प्रचंड और उग्र हो, चाहे कोमल और मधुर, वह समर्थन करता है। उसके द्वारा व्यक्ति प्रत्येक भाव के साथ वह तादात्म्य का अनुभव करता है। इसके विपरीत उसकी गति में बाधा डालने वाले लोक पीड़क अत्याचारी प्रतिनायक के प्रति पाठक के मन में कतई सहानुभूति नहीं होती। इसलिए उसके द्वारा व्यक्त भाव के साथ उसका तादात्म्य नहीं होता। उदाहरण के लिए, राम जब रावण पर क्रोध करते हैं तो उस क्रोध के साथ पाठक की पूरी सहानुभूति होती है और वह रौद्र रस का अनुभव करता है। इसके विपरीत जब रावण राम पर क्रोध करता है तो पाठक की उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती, इसलिए वह रौद्र रस की अनुभूति नहीं कर पाता। आचार्य शुक्ल साधारणीकरण के लिए पाठक या श्रोता के आश्रय के साथ तादात्म्य आवश्यक मानते हैं। इसीलिए वे लोक पीड़ा के निराकरण में तत्पर उदात्त चरित्र नायक द्वारा व्यक्त भावों में ही पूर्ण रस संचार की क्षमता स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल की यह स्थापना भी विवादास्पद है। इस स्थापना पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, इस प्रकार आलंबन का चित्र सीमित हो जाता है और परंपरा द्वारा निर्धारित आलंबन ही काव्य में ग्राह्य हो सकते हैं, अर्थात राम आदि सदा प्रीतिकर भावों के और रावण आदि अप्रीतिकर भावों के ही आलंबन बन सकते हैं। अतः यह रस दृष्टि परंपरागत नैतिक मूल्यों से परिबद्ध है। सामान्यतः परंपरा एवं नैतिक मूल्यों का अनुशासन श्रेयस्कर ही होता है और काव्य मूल्य उससे सर्वथा स्वतंत्र नहीं हो सकते। फिर भी नैतिक मूल्य और साहित्यिक मूल्य पर्याय नहीं बन सकते। इस तरह जो भाव क्षेत्र का विकास ही रुक जाएगा और मेघनाथवत जैसे महान काव्यों की रसवत्ता ही खंडित हो जाएगी। रस सिद्धांत पृष्ठ संख्या 206। वस्तुतः प्रश्न राम रावण का नहीं, मंगल अमंगल, न्याय अन्याय और सत असत का है। जब तक समाज में इन मूल्यों की प्रतिष्ठा रहेगी तब तक न्याय पक्ष में अपने व्यक्तिगत सुखों का परित्याग करने वाले और लोक पीड़क अन्यायी का दामन करने वाले लोकनायक के प्रति लोकचित्त में श्रद्धा का भाव रहेगा। इसलिए उसके द्वारा व्यक्त भावों का साधारणीकरण सहजता से हो सकेगा। मूल बात यह है कि भावों के विभाव निरपेक्ष शुद्ध अनुभूति लोकबद्ध प्राणी के लिए संभव नहीं है। ऐसी मनोदशा जिसमें सहृदय का यह भूल जाए कि यह क्रोध राम का है या रावण का, वह क्रोध की शुद्ध अनुभूति करे, एक आदर्श काल्पनिक मनोदशा है। व्यक्तिगत राग द्वेष से पूर्णतः मुक्त होकर अखंड रस की अनुभूति की अवधारणा काव्यानुभूति को शैवादेव के अखंड आत्मानंद के स्तर पर प्रतिष्ठित करने के निमित्त की गई है। इसलिए यदि काव्य को एक भौतिक या लौकिक शक्ति के रूप में देखना है, यदि यह स्वीकार करके चलना है कि काव्य में दो पक्ष होते हैं, एक न्याय का दूसरा अन्याय का, यदि काव्य में लोकद्वंद की मानसिक प्रतिच्छाया की स्थिति सहज संभाव्य है तो शुक्ल जी की स्थापना से असहमत होना संभव नहीं है। इसके विपरीत यदि काव्यानंद को युद्ध मुक्त द्वंद्वातीतीय आत्मानंद के आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिष्ठित करना मानकर चलना है तो शुक्ल जी की स्थापना का विरोध अनिवार्य है।